यरमिया अध्याय 33, यरमिया अध्याय 33 पद 1 से लेकर 3 तक। जिस समय यरमिया पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। वो परमेश्वर को पुकारता जा रहा है, परंतु परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा। यरमिया अध्याय 33 पद 3। तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये यरमिया को परमेश्वर का आमंत्रण एवं चुनौती है, मुझसे प्रार्थना कर। इसमें परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है, यदि तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। वो तो प्रार्थना करता ही आ रहा है, फिर भी परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। आप कहते हैं, मैं इस बारे में प्रार्थना कर रहा हूं। वो भी तो प्रार्थना ही कर रहा था, परंतु परमेश्वर ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा, प्रार्थना के उत्तर की प्रतिज्ञा। यदि आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो वो आपको बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा। यरमिया अध्याय 33 पद 4 से लेकर 11 तक। क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में, जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुभीते से लड़ सके, यो कहता है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो है, परंतु मैं क्रोध और जल जलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनकी लोथें उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इसराइल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले की नाई बसाऊंगा। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा, जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं, उन सब को मैं क्षमा करूंगा, क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्षने वाले और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। यहोवा यूं कहता है, ये स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि ये तो उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और ना कोई पशु, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले की नाई ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर ये प्रतिज्ञाएं इसराइल के पुनर्स्थापन के लिए कर रहा है, और ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने कह दिया है, मैं करूंगा। ये देश जिसे तुम उजाड़ कहते हो, आनंद और हर्ष नाद से गूंज उठेगा और दुल्हे दुल्हन की आवाजें सुनाई देगी तथा जब वे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने आएंगे तब मंदिर में उनके स्तुति गान की आवाज सुनाई देगी। यरमिया अध्याय 33 पद 12 से लेकर 15 तक। सेनाओं का यहोवा कहता है, सब गांवों समेत ये स्थान जो ऐसा उजाड़ है कि इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और ना पशु, इसी में भेड़ बकरियां बैठाने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, दक्षिण देश के नगरों में, बिन्यामिन देश में और यरूशलेम के आसपास, निदान यहूदा देश के सब नगरों में भेड़ बकरियां फिर गिन गिन कर चराई जाएंगी। यहोवा की यही वचन है। यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण को जो वचन मैंने इसराइल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। उन दिनों में और उन समयों में मैं दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल उगाऊंगा और वो इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। दाऊद से फूट निकलने वाली धर्म की वो कौन सी डाली है? मसीह यीशु। यहां वो मसीह के फिर से आने और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करके इसराइल राष्ट्र को फिर से उस देश में बसाने और यहोवा के द्वारा उनके पालन पोषण के बारे में भविष्यवाणी दे रहा है। यरमिया अध्याय 33 पद 16 से लेकर 18 तक। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा यूं कहता है, दाऊद के कुल में इसराइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे और लेवीय याजकों के कुलों में प्रतिदिन मेरे लिए होम बलि चढ़ाने वाले और अन्न बलि जलाने वाले और मेल बलि चढ़ाने वाले सदैव बने रहेंगे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे बलिदान चढ़ाएंगे। मसीह के आ जाने के बाद वे बलिदान क्यों चढ़ाएंगे? मसीह ने तो एक ही बार में सदा का बलिदान दे दिया था। सत्य, परंतु मसीह का बलिदान हमारे पापों के लिए था। यहां पापों के लिए बलिदान का कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि उनकी सुधि यीशु ने ले ली थी। ये जो बलिदान है वे समर्पण के बलिदान है जिसमें आपको याजक के पास एक मेमना लाना होता था जिसे वो घात करता है, तदोपरांत उससे सेक कर याजक अपने और परमेश्वर के लिए एक भाग ले लेते थे। बचे हुए मेमने के भुने मांस को तब वे सब मिलकर खाते हैं, परंतु परमेश्वर को चढ़ाया हुआ भाग जिसमें चर्बी होती थी उसे वे परमेश्वर के लिए जला देते थे। ये समर्पण की बलि है। हे परमेश्वर, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूं। ये परमेश्वर के साथ सहभागिता का ही एक बलि है जिसका अर्थ है, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे अर्पित करता हूं। इस मेमने के मांस में खाना परमेश्वर के साथ सहभागिता एवं एकता को दर्शाता है। इसी प्रकार अन्न बलि भी यही दर्शाती है। ये भी सहभागिता की बलि है। अब पाप बलि नहीं रही, यीशु ने उसे सर्वदा के लिए पूरा कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के काल में भी यरूशलेम में बलि चढ़ाई जाएगी। हम वहां बड़ी दावतें मनाएंगे और प्रभु के साथ भोजन करेंगे। यरमिया अध्याय 33 पद 19। फिर यहोवा का ये वचन यरमिया के पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, क्या परमेश्वर इसराइल को त्याग देगा? क्या परमेश्वर ने इसराइल को त्याग दिया? क्या परमेश्वर को इसराइल से कोई सरोकार ना रहा? वे जो आपको ये कहते हैं कि कलीसिया को ये क्लेश का कष्ट भोगना होगा, कहते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल को सदा के लिए त्याग दिया है। परंतु देखिए परमेश्वर क्या कहता है, यरमिया अध्याय 33 पद 20 से लेकर 24 तक। मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में ना हो, तब ही जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे, और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वाले लेवीय याजकों के संग बंदी रहेगी। जैसे आकाश की सेना की गिनती और समुद्र की बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और अपने सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। यहोवा का यह वचन यरमिया के पास पहुंचा, क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं, कि जो दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे उन दोनों से उसने अब हाथ उठाया है। आज लोग यही कह रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुना अवश्य था, परंतु अब उन्हें त्याग दिया है। यरमिया अध्याय 33 पद 24 से लेकर 26 तक। ये कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुच्छ जानते हैं और कि ये जाति उनकी दृष्टि में गिर गई है। यहोवा यूं कहता है, यदि दिन और रात के विषय मेरी वाचा अटल ना रहे और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए न रह जाएं, तभी मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा और इब्राहिम इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाऊद के वंश में से किसी को फिर न ठहराऊंगा। परंतु इसके विपरीत मैं उन पर दया करके उनको बंधुआई से लौटा लाऊंगा। देखिए परमेश्वर बार बार इसराइल पर अपना काम प्रकट करने की घोषणा कर रहा है।